नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। जीएसटी परिषद ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर मंत्रियों का समूह गठित करने का निर्णय लिया। मध्य प्रदेश सरकार ने संभागों, जिलों और तहसील के सीमांकन के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर अगले वर्ष 1 जनवरी तक प्रतिबंध लगाया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से जर्मनी की 2 दिन की यात्रा पर। अमेरिका भारत के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के अवसरों पर मिलकर काम करेगा। और हॉकी में मौजूदा विजेता भारत ने चीन में चल रहे पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट में जापान को 5-1 से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में संपन्न जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक के बाद कहा कि जीएसटी परिषद ने 2 प्रमुख मंत्री समूहों का गठन करने का निर्णय लिया है। इनमें से एक समूह चिकित्सा और जीवन बीमा संबंधी दरों को युक्तिसंगत बनाने पर काम करेगा और दूसरा मुआवजा उपकर के लिए रूपरेखा तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक नवम्बर में होगी, जिसमें स्वास्थ्य और जीवन बीमा संबंधी नए मंत्री समूहों की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा। श्री सीतारामन ने कहा कि ये मंत्री समूह अक्टूबर के अंत तक अपनी रिपोर्ट देगा। मंत्री समूह वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित बीमा मामलों, जीवन बीमा, सावधि जीवन बीमा, समूह बीमा आदि पर भी विचार करेगा।
न्यू GOMs हैव बीन डिसाइडेड। वन इज ऑन द मेडिकल एंड हेल्थ इंश्योरेंस। इट विल बी द रेट रेशनलाइजेशन GOM हेडेड बाय द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, बट अंडर हिज लीडरशिप विद न्यूअर मेंबर्स हु हैव वॉलंटियर्ड फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड GST, कम विद अ रिपोर्ट बाय एंड ऑफ अक्टूबर एंड द GST काउंसिल विच विल मीट इन नवम्बर विल फाइनलाइज बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट विच विल कम फ्रॉम द GOM।
मध्य प्रदेश में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार ने कहा है कि जन सामान्य की सुविधा और बेहतरी के उद्देश्य से जिले और संभाग की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जा रहा है।
राज्य सरकार ने 3 सदस्यीय परिसीमन आयोग का गठन किया है। आयोग का अध्यक्ष रिटायर्ड अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव को बनाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बताया कि आम लोग इस आयोग को अपने क्षेत्र की प्रशासनिक संरचना को लेकर सुझाव दे सकेंगे।
जिले तो बढ़ गए हैं, लेकिन जिलों की अपनी अपनी सीमाएं, कई लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है जिला मुख्यालय, जबकि जिला बहुत पास में है उनके। ऐसे कई विसंगतिपूर्ण व्यवस्था के लिए हमने परिसीमन आयोग एक नया बनाया है। इस परिसीमन आयोग के माध्यम से नजदीक के जिले से जुड़वा करके जनता की बेहतरी के लिए जो अच्छा हो सकता है वो जरूर करना है।
मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से देश का दूसरा बड़ा राज्य है। राज्य का क्षेत्रफल भी अधिक है, परंतु जिला और संभागों की सीमाओं के कारण लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना पड़ रहा है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से जर्मनी की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। बर्लिन में अपने प्रवास के दौरान डॉ जयशंकर जर्मनी के विदेश मंत्री और अन्य प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों के समूचे परिदृश्य की समीक्षा करना और सहयोग के नए अवसरों की तलाश करना है। विदेश मंत्री की बर्लिन यात्रा अगले महीने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स की प्रस्तावित भारत यात्रा का आधार तय करेगी। जर्मनी भारत के महत्वपूर्ण व्यापार भागीदारों में से एक है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रमुख स्रोत है। इससे पहले डॉ जयशंकर ने फलिस्तीन मुद्दे पर भारत के सैद्धांतिक और स्थिर दृष्टिकोण को दोहराया था और क्षेत्र में यथाशीघ्र युद्ध विराम की मांग की थी। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत द्विराष्ट्र समाधान के जरिए फलिस्तीन मुद्दे के समाधान का निरंतर समर्थक रहा है। अपने उद्घाटन भाषण में डॉ जयशंकर ने जनता समृद्धि और प्रगति के फ्रेमवर्क को आपसी भागीदारी का मंत्र बताया है।
Our deeper collaboration will help in stabilizing markets, driving innovation, and enhancing energy security. Our partnership in the areas of renewables, technology, and innovation, health, space, education can also help realize our respective national goals.
3 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में डॉ. जयशंकर 12 से 13 सितंबर तक जिनेवा जाएंगे। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। पहली जनवरी 2025 तक पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी रोक रहेगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सर्दियों में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और राजस्व विभाग के सहयोग से एक कार्य योजना तैयार की जा रही है। अमरीका ने कहा है कि वह भारत के सेमीकंडक्टर मिशन में साझेदार बनकर 2022 के चिप्स एक्ट के जरिए निर्मित अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सुरक्षा और नवाचार निधि के अंतर्गत वैश्विक सेमीकंडक्टर व्यवस्था के विकास और उसकी विविधता के अवसरों पर मिलकर काम करेगा। अमरीका के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह साझेदारी अधिक समर्थ, सुरक्षित और दीर्घकालिक वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला के निर्माण में मददगार होगी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अमरीका भारत रणनीतिक साझेदारी मंच की ओर से जारी एक वीडियो में अमेरिका के उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल ने कहा कि भारत के साथ अमेरिका की साझेदारी का विस्तार बाइडेन प्रशासन की ओर से किए गए सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत के प्रशासन ने इस साझेदारी को बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए काफी समय लगाया है और राजनीतिक प्रयास किए हैं। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों और सामरिक चुनौतियों को देखते हुए ये प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। अमेरिका और भारत के बीच सहयोग में वे सामर्थ्य हैं जिससे भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग का विस्तार होगा और उससे दोनों देशों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पद्म पुरस्कारों के लिए प्रेरक हस्तियों को नामांकित करने का आग्रह किया है। नामांकन awards.gov.in पर किए जा सकते हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। प्रधानमंत्री ने अब तक कई नामांकन प्राप्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में सरकार ने जमीनी स्तर के अनगिनत लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है और पुरस्कार विजेताओं की जीवन यात्रा ने अनेक लोगों को प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को झारखंड के जमशेदपुर में राज्य के 1,13,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त जारी करेंगे। देश के अन्य राज्यों के लाभार्थियों के खातों में भी किस्त की राशि जमा की जाएगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री राज्य में वंदे भारत रेलगाड़ियों को भी रवाना करेंगे।
वंदे भारत ट्रेन की सौगात झारखंड को मिलने वाली है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 3 करोड़ मकान बनाने का। कोई गरीब बिना छत के नहीं रहेगा। 1 करोड़ शहर में और 2 करोड़ गांव। तो 2 करोड़ जो गांव में मकान बनने हैं उनके अलग अलग राज्यों के जो पहले साल मकान बनने लगभग 40 लाख, उन हितग्राहियों के खाते में प्रधानमंत्री जी पहली किस्त का पैसा डालेंगे।
प्रधानमंत्री कल ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का आयोजन शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर विषय पर किया जा रहा है। 3 दिन के सम्मेलन में भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति और नीति पर चर्चा होगी। इसमें भारत को सेमीकंडक्टर के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने की परिकल्पना की गई है। जम्मू और कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के लिए 6 जिलों के 26 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन पत्र वापस लेने का कल अंतिम दिन था। 27 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस लिए। दूसरे चरण में होने वाले 26 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अब 239 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। मतदान 25 सितंबर को होगा। कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 19 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। इसमें 6 पूर्व मंत्रियों के नाम शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने घोषणा की है कि स्वास्थ्य समस्याओं से उबरने के बाद वे फिर से अपने विधानसभा चुनाव अभियान को शुरू करने के लिए तैयार हैं। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि डीपीएपी प्रमुख 12 सितंबर से दक्षिण कश्मीर और चिनाब घाटी में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार शुरू करेंगे। जम्मू कश्मीर में सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए कल दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में रैलियां, भाषण और चर्चाओं का आयोजन किया गया। इसमें वक्ताओं ने बेहतर भविष्य के निर्माण में प्रत्येक वोट के महत्व को बताया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में एक मरीज में मंकी पॉक्स संक्रमण की पुष्टि हुई है। उसने हाल ही में मंकी पॉक्स संक्रमणग्रस्त देश की यात्रा की थी। रोगी को विशेष अस्पताल में अलग रखा गया है। उसकी हालत फिलहाल स्थिर है। फिलहाल लोगों के लिए किसी व्यापक संक्रमण के खतरे के कोई संकेत नहीं है। कोयला मंत्रालय ने नई दिल्ली में कोयला सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी सीएसआर गतिविधियों की मध्य वार्षिक समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में सीएसआर के अंतर्गत शुरू किए गए उपायों की प्रगति का आकलन, समुदायों पर उनके प्रभाव का मूल्यांकन और उन्हें सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप बनाने पर विचार किया गया। इसमें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पर्यावरण, कौशल विकास और आजीविका जैसे क्षेत्रों में सीएसआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की गई। मौजूदा चैंपियन भारत ने कल चीन के हुलनबिर में पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के अपने दूसरे मैच में जापान को 5-1 से हराया। भारत की ओर से सुखजीत सिंह ने 2 गोल तथा अभिषेक, संजय और उत्तम सिंह ने 1-1 गोल किया। जापान की ओर से एकमात्र गोल मात्सुमोतो काजुमासा ने किया। इससे पहले 4 बार के चैंपियन भारत ने अपने पहले मुकाबले में मेजबान चीन को 3-0 से हराया था। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय टीम का मुकाबला कल मौजूदा उपविजेता मलेशिया से होगा। टूर्नामेंट की शीर्ष 4 टीमें 16 सितम्बर को होने वाले सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी और फाइनल 17 सितम्बर को खेला जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में दरार आने और इसके किसी भी समय ध्वस्त होने की आशंका से जुड़े दावों को खारिज कर दिया है। फैक्ट चेक यूनिट ने कहा है कि सोशल मीडिया पर एक चित्र साझा किया जा रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि कथित तौर पर मूर्ति के कुछ हिस्सों में दरारें आ रही हैं। फैक्ट चेक यूनिट ने स्पष्ट किया है कि यह चित्र 2018 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण के समय का है, इसीलिए उस समय उसके कुछ भाग बनकर पूरे नहीं हुए थे और ऐसा लग रहा है कि उसमें दरारें हैं। सरकार ने कहा है कि यह तस्वीर भ्रामक है और इस दावे को फर्जी करार दिया है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में बहुत तेज वर्षा की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज तेज वर्षा होगी। इस बीच झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगे और हिमालयी क्षेत्रों, बिहार और पूर्वोत्तर भारत में अगले 4 दिनों तक भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। ये स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, कोंकण, गोवा और गुजरात में कल तक बनी रहेगी। वहीं दक्षिण भारत में भी केरल, माही, दक्षिणी आंध्रीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय कर्नाटक में भी आज वर्षा होने के आसार हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर सहित पश्चिमी और मध्य भारत के कई भागों में इस सप्ताह हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। तेलंगाना में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान के आकलन के लिए केंद्र की 6 सदस्यीय टीम कल खम्मम और महबूबाबाद का दौरा करेगी। टीम का नेतृत्व गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव कर्नल कीर्ति प्रताप सिंह करेंगे। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कर्नल सिंह से बातचीत की, जो राष्ट्रीय आपदा राहत बल के सलाहकार भी हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबुधाबी के क्राउन प्रिंस की मुलाकात आज सभी अखबारों ने प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत यूएई संबंधों को मिलेगी नई ऊर्जा, दोनों देशों ने परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम भंडारण समेत 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। कैंसर की दवाएं होंगी सस्ती, अब 5% जीएसटी, अमर उजाला की खबर है। कोलकाता दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, शाम तक काम पर लौटें डॉक्टर, जांच एजेंसी को 17 तक नई जांच रिपोर्ट पेश करने को भी कहा। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, राजस्थान पत्रिका ने राजस्थान में जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन के बहुपक्षीय युद्धाभ्यास तरंग शक्ति का खूबसूरत चित्र प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, विरासत के माथे पर तेजस का तिलक। मंकीपॉक्स ने दी दस्तक, एक युवक में बीमारी की हुई पुष्टि, इस वर्ष दिल्ली में मंकीपॉक्स का पहला केस, दैनिक जागरण सहित कई अखबारों की खबर है। 1 जनवरी तक पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी प्रतिबंध, जनसत्ता की खबर है। पत्र लिखता है, सर्दियों में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण की कवायद तेज। नवभारत टाइम्स आतंकवाद से जंग शीर्षक से लिखता है, पुलिस के साथ मिलकर गांव वालों को सिखा रहे हथियार चलाना, जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना दे रही है ट्रेनिंग।
धन्यवाद अलका। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, जीएसटी परिषद ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर मंत्रियों का समूह गठित करने का निर्णय लिया। मध्य प्रदेश सरकार ने संभागों, जिलों और तहसील के सीमांकन के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर अगले वर्ष 1 जनवरी तक प्रतिबंध लगाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से जर्मनी की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। अमेरिका भारत के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के अवसरों पर मिलकर काम करेगा। और हॉकी में मौजूदा विजेता भारत ने चीन में चल रहे पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट में जापान को 5-1 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।